आज है मार्च महीने की 22 तारीख दिन शुक्रवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। बिहार में महागठबंधन की सीटों की घोषणा, सीपीआई गठबंधन का हिस्सा नहीं।
अब तो सबसे कठिन सवाल महागठबंधन के सामने ये होगा कि उम्मीदवारों का चयन दल में अंतर कलह पैदा करके कहीं विक्षुब्धों की तादाद न बढ़ा दे।
पुलवामा हमले पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान के बहाने बीजेपी ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। सारागढ़ी की लड़ाई में सिखों की बहादुरी पर होगी रेहान फजल की विवेचना।
9 बजे जब हमला शुरू हुआ, हवलदार ईश्वर सिंह ने सबको कहा था कि कोई फायर नहीं खोलेगा जब तक मैं ना बोलूं, और मैं तब बोलूंगा जब वो मेरे बिल्कुल राइफल के एक्यूरेट फायरिंग रेंज में आ जाएंगे।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। महागठबंधन ने बिहार में अपनी सीटों की घोषणा कर दी है। आज पटना में महागठबंधन की तरफ से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने सीटों की घोषणा करते हुए कहा कि राजद 20, कांग्रेस 9, आरएलएसपी 5, हम 3 और वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो हाल तक बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा थे और बीते साल एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बने हैं। तुर्की के इस्तांबुल में हो रही मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में कहा गया है कि इस्लामोफोबिया से लड़ना अब वैश्विक ज़रूरत बन चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की इस बैठक में ये भी कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र और यूरोप को इस तरह की खास ऑब्जर्वेटरी बनानी चाहिए जो मुसलमानों पर हो रहे हमलों पर नज़र रखे। ये बैठक न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में हुए 2 मस्जिदों पर हुए हमले के बाद उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयब अर्दोआन ने कहा कि ये ज़रूरी है कि मानवता को इस्लामोफोबिया से उसी तरह लड़ना चाहिए जिस तरह होलोकॉस्ट के दौरान यहूदी विद्रोही लड़ाई गई थी। चीन के उत्तरी शहर यानचेंग में एक केमिकल प्लांट में हुए धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। इस हादसे में 90 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुरुवार को तियानजियाई केमिकल्स के खाद बनाने वाले कारखाने में धमाका हुआ जिसके बाद वहां आग लग गई। बताया जा रहा है कि ठीक इसी वक्त यहां 2.2 तीव्रता का भूकंप भी आया था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इससे कारखाने से थोड़ी दूर में मौजूद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक स्थानीय पत्रकार ने अपना क्षतिग्रस्त घर दिखाते हुए कहा, मैंने काला धुआं देखा। मेरे घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे टूट चुके थे। दरवाजा बंद था, उस पर ताला भी लगा था, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि दरवाजा भी टूट गया। मैंने देखा कि जो कुछ वहां पर था सब टूटा हुआ था। चीन के एक स्थानीय पत्रकार की आवाज। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मालावी में चक्रवाती तूफान इडाई से मरने वालों की संख्या 500 पहुंच चुकी है। तूफान के कारण हुई भारी बारिश और इस कारण आई बाढ़ से तकरीबन 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के प्रवक्ता मिशेल ले पिचोक्स ने बीबीसी को बताया कि प्रभावितों में करीब 9 लाख बच्चे हैं जिन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत है। उनका कहना है कि मोजाम्बिक के गांवों में स्थिति और भी खराब हो सकती है।
The damage is enormous. The extent of needs that
तूफान के कारण बाहरी क्षति हुई है जिसका हिसाब लगा पाना मुश्किल है। फिलहाल बीरा शहर में राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ नदी के उस पार मानिका प्रांत के कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। जानकारी मिली है कि वहाँ बाढ़ के कारण कई समुदायों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हमें नहीं पता कि वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। यूनिसेफ के प्रवक्ता मिशेल ले पिचोक्स के शब्द। अल्जीरिया में एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इन लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति अब्देल अजीज अपने पद से इस्तीफा दें। एक महीने पहले भी इन लोगों ने राष्ट्रपति कार्यालय के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया था। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तेज पानी की बौछार की गई और उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग फिर भी डटे रहे। बीबीसी समाचार।
ये یہ بی بی سی ہندی سیوا ہے, آپ سن رہے ہیں شام کی سبھا دن بھر ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی ڈاٹ کام پر بھی اس سمے لائیو. میرا نام ہے سندیپ سونی. بہار میں آخرکار مہا گٹھ بندھن نے اپنی سیٹوں کی گھوشنا کر دی ہے. پٹنہ میں مہا گٹھ بندھن کی طرف سے ہوئی پریس کانفرنس میں راجد کی اور سے راجیہ سبھا سانسد منوج جھا اور کانگریس کی طرف سے پردیش ادھیکش مدن موہن جھا نے حصہ لیا. پہلے کہا گیا تھا کہ نیتا پرتیپکش تیجسوی یادو سنواد داتا سمیلن کریں گے, لیکن وہ نہیں آئے. منوج جھا نے بتایا کہ تیجسوی یادو اور گٹھ بندھن کے دوسرے بڑے نیتا بعد میں پریس سے روبرو ہوں گے. بہار میں این ڈی اے سے مقابلے کے لیے بنائے گئے اس مہا گٹھ بندھن میں سیٹوں کا تال میل کچھ اس طرح ہوا ہے. سنیے راجیہ سبھا سانسد اور راجد پروکتا منوج جھا کی زبانی.
دلگت استھتی سیچوار اس پرکار ہے, راشٹریہ جنتا دل 20 کانگریس 9 اس آشے کے ساتھ بھی کہ راجیہ سبھا کی پہلی سیٹ بہار کانگریس کی کسی نیتا ہو جائے گی. رالوسپا 5 ہم 3 وی آئی پی 3 اور مالے کو 1 سیٹ راجد کوٹے سے. گیا ہندوستانی عوامی مورچہ پرتھم چرن کا میں دوہرا رہا ہوں, شری جیتن رام مانجھی جی, نوادا راشٹریہ جنتا دل, شریمتی بیبھا دیوی, جموئی رالوسپا شری بھودیو چودھری, اورنگ آباد ہندوستانی عوام مورچہ شری اپیندر پرساد.
یہ تھے راجد پروکتا منوج جھا. بہار میں این ڈی اے کے مقابلے کے لیے بنائے گئے اس مہا گٹھ بندھن میں سیٹوں کا یہ جو بٹوارا ہوا ہے وہ کیا بتاتا ہے, کیا درشاتا ہے, کیا معنی ہیں اس کے, سمجھنے کے لیے میں نے بہار میں ورشٹھ پترکار منی کانت ٹھاکر سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی.
دیکھیں, مجھے تو شروع سے ہی لگ رہا تھا کہ مہا گٹھ بندھن کے سارے گھٹک دل سیٹوں کے بٹوارے میں اپنے اپنے فائدے کے لیے انت تک دباؤ بنا کے رکھیں گے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ٹوٹنے سے پہلے ہی بچا لینا, تو ایسا ہی سمجھوتا ان کے بیچ ہو جائے گا, اور ایسا ہی ہوا. حالانکہ چناوی گٹھ بندھن کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سندیپ, پہلے بھی اور پرائے سبھی گٹھ بندھنوں کو ایسے دور سے گزرنا پڑا ہے. کئی بار تو میں نے دیکھا ہے کہ گٹھ بندھن سے کوئی چھوٹا گھٹک چھٹک کر باہر ہو گیا. خیر, اس مہا گٹھ بندھن میں جو کھینچ تان کے بعد آج سیٹ شیئرنگ کی تصویر بنی ہے, اس میں میرے خیال سے آر جے ڈی کا سیاسی وزن گھٹا نہیں ہے, کچھ بڑھا ہی ہے. اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کانگریس کی چاہت کا جو اتریک بہار میں دکھنے لگا تھا, اسے لالو یادو اور تیجسوی یادو نے زمینی سچائی والے دائرے میں آخر کار باندھ ہی دیا. پھر بھی 9 سیٹوں کی حصے داری کوئی کم نہیں ہوتی, کیونکہ جو 4 چھوٹے گھٹک دل ہیں اس مہا گٹھ بندھن میں, ان کے بیچ باقی بچی 11 سیٹوں کا بٹوارا ان کے جنادھار کے مد نظر کرنا ضروری تھا, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو مہا گٹھ بندھن جیسی کوئی تصویر بنتی ہی نہیں.
منیکانت جی, یہ بتائیے کہ راجد کو 20, کانگریس کو 9, آر ایل ایس پی کو 5, ہم پارٹی کو 3, وی آئی پی 3 اور مالے کے کھاتے میں جو ایک سیٹ چھوڑی گئی ہے, یہ سیٹیں اس طرح سے بٹیں گی, یہ بتانے میں, یہ طے کرنے میں مہا گٹھ بندھن کو اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی؟
دیر کی وجہ صاف ہے. کانگریس, سب سے پہلے تو کانگریس اور آر جے ڈی کے بیچ ہی یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, اس لیے کہ اڑی ہوئی تھی آر جے ڈی کہ وہ 20 سیٹوں سے کم پر چناوی میدان میں نہیں اترے گی, اور ظاہر بھی تھا کہ آدھے سے کم سیٹوں پر اترنا اس کے لیے بھی کئی طرح کے سوال پیدا کر سکتے تھے. تو اور دوسری طرف کچھ کانگریس کی مہتواکانکھا بھی جگی پچھلے کچھ سمے میں, جس طرح سے کانگریس کو کا منوبل بڑھا ہے, تو بہار میں بھی انہوں نے 10 یا 11 سیٹوں کی مانگ رکھی کم سے کم. تو اس پر کھینچ تان ہو رہی تھی, اور جو چھوٹے چھوٹے گھٹک دل ہیں جیسے جیتن رام مانجھی کی پارٹی یا اپیندر کشواہا کی پارٹی یا پھر مکیش سہنی کی پارٹی, ان لوگوں نے بھی اس طرح سے دباؤ بنا کے رکھا تھا تاکہ کانگریس کو اگر زیادہ سیٹیں ملتی ہے تو ان کو اتنی سیٹیں نہیں مل پاتی, تو اس طرح سے سنتولن بنانا مشکل ہو رہا تھا, اور اسی میں اتنی دیر ہوئی.
منیکانت جی, اگر ابھی یہ مان بھی لیا جائے کہ سنتولن بن گیا ہے اور این ڈی اے کے مقابلے مہا گٹھ بندھن کھڑا ہو گیا ہے بہار میں, ایسے میں اب اس مہا گٹھ بندھن کے سامنے کیا چنوتیاں دیکھتے ہیں آپ, راہ کتنی آسان کتنی مشکل؟
دیکھیے, یہ راہ تو بہت کٹھن ہے. اب تو سب سے کٹھن سوال مہا گٹھ بندھن کے سامنے میرے خیال سے یہ ہوگا کہ امیدواروں کا جو چین وہ دل میں انتر کلہ پیدا کر کے کہیں وکشبدوں کی تعداد نہ بڑھا دے. اس کو ایسے سمجھیے کہ بہار میں نیتیش کمار کے ایسے سمرتھک متداتا بھی ہیں جو بی جے پی اور ایل جے پی یعنی رام ولاس پاسوان کی پارٹی ایل جے پی سے بھڑکے ہوئے رہتے ہیں. इसी तरह बीजेपी के अगड़े समुदाय की नीतीश कुमार से चिढ़ भी समय समय पर जाहिर होती रही है। ठीक ऐसे ही आरजेडी का एक बड़ा तबका कांग्रेस समर्थक अगड़े समाज से खुन्नस में भी रहता है और कई कांग्रेसियों को आरजेडी से सख्त परहेज रहता है, तो ऐसे में वोट ट्रांसफर कितना मुश्किल है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
बिहार में महागठबंधन की सीटों की घोषणा हो चुकी है और इसका विश्लेषण कर रहे थे पटना से वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
पुलवामा हमले के संबंध में राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा कह दिया जो कुछ कुछ विवाद की वजह बन गया।
आई डोंट नो इनफ अबाउट द अटैक्स, ओके, अटैक्स हैपन ऑल द टाइम, अटैक्स हैपन ड्यूरिंग व्हाट वाज दिस मुंबई ताज होटल एंड ओबेरॉय होटल, आई मीन वी कुड हैव देन रिएक्टेड एंड जस्ट सेंड आवर प्लेन्स, बट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स नॉट हाउ यू डील विथ वर्ल्ड, बिकॉज एट पीपल कम एंड डू समथिंग, यू डोंट जंप ऑन द एंटायर नेशन, इट डजंट वर्क दैट वे, इट्स नाइव टू अस्यूम that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. I don't believe that way.
ये थे राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा जो कह रहे थे कि इससे पहले ताज और ओबेरॉय होटल पे भी हमला हुआ लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कोई बात या कार्रवाई तब नहीं की गई और पुलवामा हमले के लिए पूरे किसी एक देश को पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा था, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसे जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता। और बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, उनके इस बयान का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बयान निकल चुका था, जबान से निकल चुके थे शब्द सैम पित्रोदा के और इसके बाद विवाद होना था, विवाद हुआ। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी कड़ी भर्त्सना की, वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सैम पित्रोदा के बयान के बहाने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया।
जो लोग इस देश को समझते नहीं है, इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते, इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। अगर गुरु कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हो, तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है।
ये थे बीजेपी नेता अरुण जेटली।
बीबीसी इंडिया पोल।
लोकसभा चुनावों का असली मुद्दा क्या हो, राष्ट्रवाद या बेरोजगारी और कृषि संकट, यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 23 मार्च शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब बात सारागढ़ी की लड़ाई की, सिखों की बहादुरी की। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है केसरी, जिसमें 1897 में हुई सारागढ़ी की लड़ाई का चित्रण किया गया है। इस लड़ाई में 22 सिख जवानों ने 7 घंटे तक 10,000 पठानों का मुकाबला किया अपने दम पर। इस लड़ाई को दुनिया के बेहतरीन लास्ट स्टैंड्स में से एक माना जाता है, जिसमें मारे गए सभी 21 जवानों को उस समय का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार दिया गया था। क्या हुआ था सारागढ़ी की उस लड़ाई में, बता रहे हैं रेहान फजल आज विवेचना में।
जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे, कबहू ना छोड़े खेत।
12 सितंबर 1897 उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कोहाट जिले में 6,000 फीट की ऊंचाई पर सारागढ़ी किला। किले पर 36 सिख रेजिमेंट के 21 जवान तैनात थे। सुबह के 8 बजे थे। बाहर तैनात संतरी ने दौड़कर अंदर खबर दी कि हजारों पठानों का एक लश्कर झंडों और नेजों के साथ उत्तर की तरफ से सारागढ़ी किले की तरफ बढ़ रहा है। उनकी तादाद 8,000 से 14,000 के बीच थी। सारागढ़ी लड़ाई पर बहुचर्चित किताब द आइकॉनिक बैटल ऑफ सारागढ़ी लिखने वाले ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह बताते हैं,
8 बजे जब खबरें मिलनी शुरू होगी, बल्कि उससे पहले ही कि कुछ लोग इकट्ठे हो रही है, मट्टी उड़ी क्यों उड़ी, घोड़े आगे बढ़े, फिर पता चला कि वहाँ तो बहुत फौज है जो कि हमला करने वाली है, तो इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और इन्होंने अपनी जो जगह थी उनकी तैनात जगह थी उन जगह में पहुंच गए। लेकिन 9 बजे जब हमला शुरू हुआ तो हवलदार ईश्वर सिंह ने सबको कहा था कि कोई फायर नहीं खोलेगा जब तक मैं ना बोलूं, और मैं तब बोलूंगा जब वो मेरे बिल्कुल राइफल के एक्यूरेट फायरिंग के रेंज में आ जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा जाए, हम उसका रिस्क लेंगे, उनको नज़दीक आने देंगे। तो फायर डिसिप्लिन को कायम करते हुए जब वो लोग सिर्फ 200 गज पहुंच गए, इसने ऑर्डर दिया फायर, और कितनों को ही मारा, कितने ही जख्मी हुए, और वो पठानों का इतना जो अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए अपनी राइफल्स अपने जजेल्स फायर करते हुए नेज़ों के साथ झंडों के साथ और टॉम टॉम बजाते हुए जो आगे बढ़ रहे थे, जो किसी के भी दिल को दहला देता, वो वहीं पे मात खा गए।
हवलदार ईश्वर सिंह ने पास के फोर्ट लोकहार्ट पर तैनात अंग्रेज अफसर कर्नल हॉटन को हालात से अवगत कराया। कर्नल हॉटन का हुक्म आया, होल्ड योर पोजीशन। 1 घंटे के अंदर किले को 3 तरफ से घेर लिया गया और अगजइयों के नेता गुलशाह ने सफेद झंडे के साथ अपना एक सैनिक सारागढ़ी किले पर भेजा।
इस दौरान जो गुल बादशाह उनका लीडर था, वो हवलदार ईश्वर सिंह के सम्मुख हुआ। उसने कहा कि तुम तादाद में बहुत थोड़े मारे जाओगे, और तुम अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हो, अंग्रेजों की लड़ाई लड़ रहे हो, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो उनकी? तो उसके जवाब में हवलदार ईश्वर सिंह ने कहा, ये तो जमीन महाराजा रणजीत सिंह की, हमारी जमीन है, हम यहाँ लड़ेंगे और मिट जाएंगे, आप अगर हिम्मत है आगे बढ़ो और हमारी गोलियों का मजा लो, और ये हमें बहलाने के तरीके बंद करो कि आप हमें महफूज तरीके से कोहाट भेज देंगे या कुछ कर देंगे और लड़ें। असल में तो सुना गया कि उसने गाली गलौज भी किया, आफ्टर ऑल जोश में ये बातें तो होती हैं।
सवाल उठता है कि इतनी तादाद में औरंगजेबियों ने सारागढ़ी किले पर हमला क्यों किया? ये वो इलाका है जहां रहने वाले लोगों पर आज तक किसी का नियंत्रण नहीं हो पाया है। 1880 के दशक में अंग्रेजों ने यहां 3 चौकियां बनाई, जिसका कि स्थानीय औरंगजेबी कबायलियों ने जबरदस्त विरोध किया। जाने माने सैन्य इतिहासकार और सैनिक थिंक टैंक यूएसआई के सचिव राणा छीना बताते हैं,
97 में एक फ्रंटियर अपराइजिंग हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। उस टाइम ये जो एरिया था जिसको ब्रिटिश इंडिया में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते थे और आजकल पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वो एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी में आता था, लेकिन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। इट वॉज एक किस्म का बॉर्डर एरिया था जहाँ सिर्फ जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्हीं का ही कानून चलता था और किसी का नहीं। तो ये कोशिश थी अंग्रेजों की उस एरिया को कंसोलिडेट करें। उस जमाने में ब्रिटिश इंडिया में एक बहुत ज्यादा जो खौफ था उनको वो रशिया की तरफ से था। सो डिफेंस ऑफ द इंडियन फ्रंटियर्स वो रूस इंपीरियल रशिया की तरफ देख के ज्यादा उनका होता था। अफगानिस्तान को एक वो बफर स्टेट की तरह मानते थे। 1897 में जो फ्रंटियर ट्राइब्स थी, इन्होंने जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, रोड्स बिल्ड करने की कोशिश की उस ट्राइबल एरिया में, तो उन्होंने एक अंग्रेजों के खिलाफ अपराइजिंग घोषित कर दी, एक जिहाद डिक्लेयर कर दिया। तो फिर इंडियन आर्मी को वहां पे भेजा गया था उसको कंटेन करने के लिए।
दोबारा लौटते हैं लड़ाई की तरफ। पहले 1 घंटे में ही पठानों के 60 सैनिक मारे जा चुके थे और सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह की भी मौत हो चुकी थी।
इस दौरान अपने भी तकरीबन 5-6 आदमी या जख्मी हो गए थे या शहीद हो गए थे। अब उन्होंने एक और चाल चली क्योंकि वो हमला भी नाकामयाब रहा। चारों तरफ सूखी झाड़ियां थी, उन्होंने मशाले फेंकी, आग लगा दी। आग का फायदा उठाते हुए उन्होंने मंजिए कॉट्स ली, उनके ऊपर मट्टी डाली, पत्थर डाले, और 2 आदमी एक कॉट के नीचे छुपते छुपाते जो एक कॉर्नर था जो कि अंदर के लोगों को गली के लोगों को दिखाई नहीं देता था, वहाँ छेद बनाना शुरू कर दिया। मेजर देशमुख ने गुलिस्तान की तरफ से उनको काफ़ी मैसेज भेजे कि आपके साइड में एक छेद बन रहा, लेकिन लड़ाई के दौरान या बात की समझ नहीं आई या मैसेज ठीक तरह से वो ले नहीं पाए, ये बात वहाँ तक नहीं पहुँची, नहीं तो शायद वो छेद ना करने दिया जाता।
इस बीच लांस नायक चांद सिंह के साथ मुख्य ब्लॉक में तैनात 3 जवान साहिब सिंह, जीवन सिंह और दया सिंह भी मारे गए। जब चांद सिंह अकेले रह गए तो ईश्वर सिंह और उनके बचे हुए साथी अपनी रक्षण पोजीशन को छोड़कर उनके पास मुख्य ब्लॉक में आ गए। ईशर ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो अपनी राइफलों में संगीन लगा लें।
इतने में इतनी गोलियां चल रही थी अफगानों की, वो भी बड़े एक्यूरेट और बड़े दबंग और बड़े बहादुर आदमी थे कि उन्होंने जो गाड़ी का दरवाजा था एक लकड़ी का था, उसमें बहुत गोलियां लगने से उसकी भी छिलतने बन के और दरवाजा उड़ना शुरू हो गया। तो आखिरी हमला जो उन्होंने तकरीबन 3:30 बजे किया, तब तक वो जो छेद बन रहा था वो गिर गया, और बाद में जो देखा गया है 12 फीट बाई 7 फीट का वो पार बन गया था और इधर से दरवाजा टूट गया था और वो अंदर आ गए। तब तक सब आदमी लड़ते हुए कईयों को मारते हुए शहीद हो गए।
करीब 2 मील की दूरी से पास के लॉकहार्ट किले से ये लड़ाई देख रहे कर्नल हॉटन ने सारागढ़ी में फंसे अपने साथियों की मदद करने की कोशिश की। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी किताब सारागढ़ी एंड द डिफेंस ऑफ द सामना फोर्ट में लिखते हैं,
उस इलाके में हजारों पठानों के बढ़ने के बावजूद लेफ्टिनेंट मन और कर्नल हॉटन ने एक बार फिर 78 साथियों के साथ सारागढ़ी में गिर चुके अपने साथियों की मदद के लिए फायरिंग करना शुरू कर दी ताकि पठानों का ध्यान भंग हो। जब वो किले से सिर्फ 500 मीटर दूर थे, उन्होंने देखा कि पठान किले की दीवार फल्लांग चुके हैं और किले के मुख्य द्वार पर आग लगी हुई है। हॉटन को अंदाजा हो गया कि सारागढ़ी गिर चुका है।
आखिर में नायक लाल सिंह, एनसी दाद और सिग्नलमैन गुरमुख सिंह जिंदा बचे। गुरमुख ने कर्नल हॉटन को संदेश भेजा।
आखिर में जो गुरमुख सिंह था उसने लास्ट मैसेज कर्नल हॉटन को ये भेजा, अब आग भी लग गई है अंदर और मैं अकेला हूँ और मैसेज नहीं भेज सकूंगा, मैं अभी राइफल पकड़ रहा हूँ। उसने राइफल पकड़ी, बैनेट से तलवार से कहा जाता है 20 आदमी मारे। तकरीबन 4 बजे तक 7 घंटे लगातार 21 आदमियों ने 12,000 10,000 आदमियों का मुकाबला किया।
इस लड़ाई को दुनिया के सबसे बड़े लास्ट स्टैंड्स में जगह दी गई। 36 सिख के मारे गए सभी सैनिकों को उस समय का सबसे बड़ा वीरता सम्मान इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट क्लास 2 दिया गया।
कर्नल हॉटन ने पहले तो इन बहादुरों को सैल्यूट किया, फिर ये खबर पंजाब के गवर्नर को भेजी, पंजाब के गवर्नर ने ये खबर इंग्लैंड में भेजी। उस वक्त जो पार्लियामेंट उस सेशन में थी इंग्लैंड में, जब उनको ये खबर मिली कि ऐसी बहादुरी दिखाई गई है एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन फोर्स की, तो सारे मेंबर्स पार्लियामेंट खड़े हो गए और दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम हुई कि उन्होंने इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दी। और ये बात जब क्वीन विक्टोरिया को पता लगी तो उसने कहा सबसे हाईएस्ट अवार्ड इनको दिया जाए। उस वक्त विक्टोरिया क्रॉस हिंदुस्तानियों को नहीं दिया जाता था, सबसे बड़ा अवार्ड था इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो उस वक्त के विक्टोरिया क्रॉस आज के हमारे PVC के बराबर है, वो दिया गया। और इसके अलावा और बहुत से इनाम दिए गए इनको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के अलावा। उनके डिसेंडेंट्स को हर एक को 500 रुपया, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, सबको दी गई। उनके डिसेंडेंट को 2-2 मुरब्बे ज़मीन जो कि 50 एकड़ के बराबर होती है, वो दी गई। ये स्टोरी UNO की 8 सबसे दुनिया की बहादुर स्टोरीज में ली गई।
दोनों पक्षों के पास आधुनिक और परंपरागत हथियारों का अच्छा सम्मिश्रण था, बस उनके पास तोपे नहीं थी।
हमारी फौजें थी हिंदुस्तानी, इनको दी गई थी मार्टिनी हेनरी ब्रिज लोडिंग। एक एक राउंड भरना पड़ता था, गर्म भी हो जाती थी, टाइम भी लगता था, लेकिन कहते हैं कि 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकते थे। जो मार्टिनी हेनरी मैगजीन के साथ जिनमें ज्यादा राउंड आते थे वो अंग्रेजों के पास थे। इसके अलावा सिखों के पास तलवारें, छोटी तलवार जो वो रखते हैं अपना अमृत छकने के बाद, और सिखों के पास एक बहुत बढ़िया और हथियार था जो कि पगड़ी के ऊपर चक्र बांधते थे, और वो चक्र में इन्होंने प्रैक्टिस के साथ इतनी अहमियत पैदा कर ली थी कि वो रीजनेबल डिस्टेंस तक 20-30 गज तक अगर एम्युनिशन ना हो जाना ना लड़ सके तो वो चक्कर को चला के उसका गला काट देते थे। और कई और उनके पास एक तो लोकल बनी हुई जैसेल राइफल थी जो तकरीबन 8 फीट लंबी थी, वो घोड़े पे बैठे हुए भी उसको भर सकते थे। आगे से मजल लोडिंग होती थी, आगे से लोड किया जाता था फायर, फिर मजल लोडिंग, टाइम लगता था।
सवाल उठता है कि 36 सिख के इन 21 जवानों ने आखिर क्यों इस लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगा दी। शोर मचाते आगे बढ़ते पठानों को देखकर वो विचलित क्यों नहीं हुए?
पहली बात तो ये सब लोग पास पास के गांवों से थे, और एक अगर भागे तो वो बदनामी सब गांव में जा सकती थी। तो लोगों को ये डर था कि मैं बदनाम ना हो जाऊं, घर में जाऊं ये ना कि मेरे को कुछ देखे नहीं, मेरा भाई बहन या मेरा फादर या मेरी वाइफ मेरी तरफ देखे नहीं। दूसरा रेजिमेंटेशन पे एक बहुत तगड़ी चीज होती है। जब हम चार आदमी इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, गेमें खेलते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन हम ऐसे भाइयों की तरह एक हो जाते हैं। जब एक जाता है दूसरा कहता है तू कैसे गया, मैं इसका बदला लूंगा। इसके अलावा इनमें खासतौर पर एक ये बात थी, इनको मालूम था कि हमलावर सारे मुस्लिम बाएं से दाएं को आते रहे हिंदुस्तान को, पहली दफा तो उन्होंने खदेड़ा, अब उनको दोबारा चांस नहीं देना आगे बढ़ने का, खत्म करना ही होगा।
इस पूरी लड़ाई में सारागढ़ी में मौजूद NCE दाद को कोई वीरता सम्मान नहीं मिला, क्योंकि वो NCE यानी नॉन कॉम्बेटेंट इनरोल्ड थे और उन्हें हथियार उठाने की इजाजत नहीं थी। ब्रिटिश सरकार की ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, क्योंकि असैनिक होते हुए भी दाद ने अपनी राइफल या संगीन से कम 5 पठानों को मारा था। लड़ाई के बाद मेजर जनरल गीटमैन बिक्स ने कहा कि 21 सिख सैनिकों की बहादुरी और शहादत को ब्रिटिश सैनिक इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। 4 बार की गत चैंपियन भारत ने बुधवार को बांग्लादेश पर 4-0 की शानदार जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाई और आज फाइनल में उसने 3-1 से नेपाल को हरा दिया। वैसे भारतीय फुटबॉल महिला टीम को पहले ही मुख्य दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब अगर इस बात पे विचार किया जाए कि भारतीय महिला टीम की ये जीत इंटरनेशनल लेवल पे क्या मायने रखती है, इस बात पे फुटबॉल एक्सपर्ट गौस मोहम्मद क्या कहते हैं।
देखिए, ऐसा है कि फीफा में एक चीज हो जाती है कि जैसे आपने फीफा का जो एक मीडिया सेंटर है वहां से ये या हर वीकली एक रिपोर्ट जो जाती है, फीफा के प्रेसिडेंट भी देखते हैं, उनके जो इवेंट कमेटी जो टूर्नामेंट अलॉट करते हैं सब देखते हैं, एक इम्प्रेसिव चीज होती है। अच्छा, अब देखिए ये जीते हैं तो वो जो अंडर 17 गर्ल्स का मिला है तो वो बोलेंगे ये जस्टिफिकेशन है, हमने एक ऐसे देश को दिया है जो अपने सेफ फुटबॉल एक इंटरनेशनल फुटबॉल है उसके अंदर उन्होंने ये खिताब 5वीं बार जीता है। 62 यानी 62वीं रैंकिंग है महिला वर्ग की, अगर हम दिसंबर 2018 तक की बात करें। इससे ज्यादा बेहतर जो काम हुआ है वो अंडर 17 का जो हमें गर्ल्स का फीफा कप मिला है, तब जाके यहाँ हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी फायदा होगा, हमने अच्छी शुरुआत कर दी है।
तो इस तरह से सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप 5वीं बार भारतीय महिला फुटबॉल टीम को मिली। और अब बात करते हैं हॉकी की। पिछले साल की निराशा को भुलाते हुए भारतीय पुरुष हॉकी टीम शनिवार को इपोह में 28वें सुल्तान अजलान शाह कप के पहले मैच में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। तो आज खेल समाचारों में इतना ही, नमस्कार।
कुछ ही देर में भारत में बजेंगे रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
BBC समाचार। महागठबंधन ने बिहार में अपनी सीटों की घोषणा कर दी है। आज पटना में महागठबंधन की तरफ से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने सीटों की घोषणा की। तुर्की के इस्तांबुल में हो रही मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में कहा गया है कि इस्लामोफोबिया से लड़ना अब वैश्विक ज़रूरत बन चुका है। चीन के उत्तरी शहर यानचेंग में एक केमिकल प्लांट में हुए धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मालावी में चक्रवाती तूफान इडाई से मरने वालों की संख्या 500 पहुंच चुकी है। अल्जीरिया में एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इन लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति अब्देल अजीज अपने पद से इस्तीफा दें। शी जिनपिंग राजनयिक यात्रा के मद्देनजर इटली पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मार्टारेला ने किया। उम्मीद जताई जा रही है कि शी जिनपिंग यहां अपने देश की अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के बारे में बात करेंगे एवं कुछ राजनयिक समझौते भी हो सकते हैं। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह, हमें आप तक पहुंचा रहे थे। अगला प्रसारण नमस्कार भारत हर दिन की तरह भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि।